हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Yeah. जय सुभद्रा।
करेणुमत्यांग नकुल नरमित्रं तथार्जुन इराबन्त मूल्यप्यान् इराबन्त मूल्यप्यं ये सुतायं बभ्रुवाहनम् मणिपुरपतेऽपि तत्पुत्र पुत्रिकासुत करेणुमत्यांग नकुल नरमित्रं तथार्जुन इरावन्त मूल्यप्यङ्गे सुतायां वब्रुवाहनम् मणिपुरपते सोऽपि तत्पुत्रपुत्रिकासुत करुणिमत्यांग नकुल नरमित्रं तथार्जुन इरावन्त मूल्यप्यङ्गे सुतायं बभ्रुवाहनम् मणिपुरपते सोऽपि तत्पुत्र पुत्रिका सुताः श्लोकों का शब्दार्थ ऐसे हैं, मेरे पीछे तरह बोलिए। करुणे त्वाम करेणुमति नामक पत्नी से नकुल नकुल नरमित्रम नरमित्र तथा भी अर्जुन अर्जुन इरावंतम इरावन उल्लुप्याम नागकन्या उल्पी से व निसंदेह सुतायाम पुत्री से बब्रुवाहनम बब्रुवाहन मणिपुर पते मणिपुर के राजा की स ओ अपि यद्यपि तत्पुत्र अर्जुन का पुत्र पुत्रिका सुत अपने नाना का पुत्र ट्रांसलेशन एंड पर्पट है डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की ट्रांसलेशन। नकुल की पत्नी करुणेमती से नरमित्र नामक पुत्र हुआ। इसी प्रकार अर्जुन को नागकन्या उल्पी नामक अपनी पत्नी से इराबान नामक पुत्र तथा मणिपुर की सहजादी कन्या के गर्भ से बब्रुवाहन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बब्रुवाहन मणिपुर के राजा का दत्तक पुत्र बन गया। तात्पर्य यह समझ लेना चाहिए कि पार्वती मणिपुर नामक अत्यंत प्राचीन पहाड़ी देश के राजा की कन्या थी। अतः 5000 वर्ष पूर्व जब पांडव शासन कर रहे थे तो मणिपुर का अस्तित्व था और यहाँ राजा होता था। अतएव मणिपुर राज्य अत्यंत प्राचीन राजतंत्र वैष्णव राज्य था। यदि इसे वैष्णव राज्य के रूप में फिर से संगठित किया जाए तो महान सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ये राज्य 5000 वर्ष से अपनी पहचान बनाए हुए हैं। यदि वैष्णव वृत्ति का पुनः जागरण हो तो ये सारे विश्व में अद्भुत स्थान सिद्ध हो सकता है। वैष्णव समाज में मणिपुर वैष्णव अत्यंत विख्यात है। वृंदावन एवं नवदीप में मणिपुर के राजा के कृष्ण भक्त के सहयोग से मणिपुर राज्य में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का भलीभांति प्रसार हो सकता है। इसके पहले कुछ श्लोक हैं, पीछे पढ़ लेंगे। इसके पहले हे राजा, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने 100 पुत्र तथा एक कन्या को जन्म दिया। सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था और कन्या का नाम दुस्सला था। नेक्स्ट, एक मुनि के द्वारा स्थापित होने से पांडु को विषय जीवन से रोक दिया गया। अतएव उसकी पत्नी कुंती के गर्भ से 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन उत्पन्न हुए, जो क्रमशः धर्मराज, वायुदेव तथा इंद्रदेव के पुत्र थे। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने नकुल तथा सहदेव को जन्म दिया, जो दोनों अश्विनी कुमारों द्वारा उत्पन्न थे। युधिष्ठिर इत्यादि 5 भाइयों ने द्रौपदी के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न किए। वो 5 तुम्हारे चाचा थे। युधिष्ठिर से प्रतिबंध, भीम से श्रुतसेन, अर्जुन से श्रुतकीर्ति तथा नकुल से शतानिक नामक पुत्र हुए। नेक्स्ट, हे राजा, सहदेव के पुत्र से सत्यक्रमा था। यही नहीं, युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों की अन्य पत्नियों से और भी पुत्र उत्पन्न हुए। युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी पौरवी के गर्भ से देवक को और भीमसेन ने अपनी पत्नी हिडम्बा के गर्भ से घटोत्कच तथा काली के गर्भ से सर्वगत नामक पुत्र को जन्म दिया। इसी प्रकार सहदेव को उसकी पत्नी विजया से सुहत्र नामक पुत्र प्राप्त हुआ। विजया पर्वतों के राजा की पुत्री थी। श्री राधा गिरिधरी भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्रील प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलम्, श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथ नितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता शिविशाखानुतंस। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी भ्रमामि हरि प्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद जी ने भागवत के ये अध्याय में महाभारत का कुछ अंश को यहाँ पर रखे हैं, महाभारत कुछ बातें को भागवत में कुछ रखे हैं, ऐसे भागवत जो होता है वो सारे शास्त्रों की निचोड़ है। सारे आप भागवत अध्ययन करोगे तो आपको सारे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और कलयुग में सारा संसार जब अज्ञान रूपी अंधकार में डूब जाएगा, ठीक उसी समय श्रीमद् भागवत महापुराण अज्ञान रूपी अंधकार में डूबने वाला व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम रोशनी प्रदान करेगा। मतलब भगवत धाम जाने के लिए एक प्रकार का खुराक प्रदान करेगा। कलयुग में जो लोग कलयुग में प्राय लोग अज्ञान में हैं, और ये अज्ञान के कारण लोगों में संसार की बंधन होती है। इग्नोरेंस द कॉज ऑफ बंडेज, प्रभुपाद जी ऐसे लिखे हैं कि अज्ञान जो है बंधन के कारण है। जब व्यक्ति में ज्ञान नहीं होता तो सच को सत्य को झूठ और झूठ को जो है सत्य मानता है। ये कलयुग में लोगों में एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। और कलयुग में लोगों में सत्य को समझने में बहुत देरी होती है, और तब तक हमारा आयु क्षीण हो जाती है, बुढ़ापा आ जाती है, फिर आध्यात्मिक साक्षात्कार नहीं कर पाते। एक तो कलयुग है उसमें जीवन की जो अवधि है बहुत कम है, और इतने कम समय के भीतर आध्यात्मिक साक्षात्कार करना, पहले समय में लोगों में बहुत बड़े तपस्या करनी होती थी। लोग हजारों साल भगवान को प्राप्त करने के लिए बैठ जाते थे ध्यान धारणा तपस्या के द्वारा। लेकिन कलयुग में यदियों लोगों में बड़े कम समय निर्धारण किया गया, जीवन का जो सीमा है बड़े कम है, फिर एक कम समय के भीतर बड़ी ऊंची वस्तु को प्राप्त करने के लिए भगवान बड़े कृपालु होकर चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हरे कृष्ण मंत्र प्रदान किया गया। यदि हमें हरे कृष्ण महामंत्र को गंभीर रूप में हमारे जीवन में लें तो फिर कुछ सदगति हो सकती है। तो ये तो है कलयुग में अज्ञान को नाश करने के लिए श्रीमद् भागवतम महापुराण भगवान का एक वांग्मय रूप है। भगवान के कलयुग में चार अवतार है, तुलसी गंगा भक्त भागवत जन चतुर्थ विग्रह कृष्ण, ये चार स्थान है। ये चार स्थान में भगवान अपने को छोड़ दिए कलयुग में। ये चारों जगह में यदि हमें भगवत संधान की आश्रय लेंगे तो निश्चित रूप से हमें आत्म अनुभूति का जो ज्ञान है हमें उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी में चारों में श्रीमद् भागवतम एक है, और इसीलिए भगवान के जो साहित्यिक अवतार है श्रीमद् भागवत ना व्यासदेव, साहित्यिक अवतार के रूप में व्यासदेव को माना जाता है। और व्यासदेव जी ने कलयुग का सामना करने के लिए और कलिकलमसु से अपने को खोज पाने के लिए, स्वरूप स्थित होने के लिए श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेने के लिए स्वयं व्यासदेव जी ने भागवतम को ऐसे ऊपर करके रखा। आप लोग प्रभुपाद जी के कोई फोटो में देखोगे भागवतम के भीतर श्रील व्यासदेव श्रीमद् भागवतम को अपने हाथ में लेकर ऐसे सारा संसार को एक प्रकार का आह्वान कराते हैं, दर्शन भागवतम का दर्शन करा। श्रील व्यासदेव जी एक प्रकार का सारे संसार को एक प्रकार का बुलाते हैं, आ जाओ श्रीमद् भागवतम महापुराण का आश्रय ले लो, भगवत साक्षात्कार डेरी नहीं है, ये सत्य बात है। कभी कभी हमें श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करके आश्रय लेकर के तो भागवतम के भीतर भागवतम का संदेह कर लेते हैं, और ये भागवतम का आश्रय यदि हमें परंपरा पद्धति के द्वारा लेते हैं तो फिर ये भागवतम फिर हमें भगवान का भेंट करा सकता है। तो तो ये तो ये बात है। तो यहाँ पर जो चर्चा विषय है तो अजमेर की संतान है, अजमेर के संतान है, वंशज वंश परंपरा के भीतर जो कैरेक्टर चरित्र आए हैं, ये चरित्र इतने उज्जवल कैसे बने, और ये व्यक्तियों से जो प्रकट हुए, उत्पन्न हुए, तो उनका जीवन को श्रीमद् भागवतम में रखा गया, मतलब वो जीवन में कुछ रहस्य है। पांडवों में हमें देखेंगे तो बड़े ही वीर पुरुष थे, बड़े धनुर्धारी थे, अर्जुन कम नहीं थे, और भीमसेन तो इतने बड़े व्यक्ति थे, और युधिष्ठिर महाराज भी कम नहीं थे। देखा जाए पांडवों ने शारीरिक आर्थिक और सब दृष्टि से संपन्न थे, सारे दृष्टि से वो संपन्न थे, फिर सारे दृष्टि संपन्न होते हुए भी उन्होंने भगवान का शरणागति लिए। तो यहाँ पर पांडवों से हमें यही शिक्षा कर सकते हैं, चाहे संसार में कितने बड़े धनी हो, ज्ञानी हो, सुंदर हो, तो पांडवों के जीवन से हमें दिखा जाता है इतने बड़े सब कुछ होने के बाद भी वो भगवान का शरण लिए। तो यहाँ से हमें यही सीख सकते हैं, हमारे पास जो भी शक्ति है, ये शक्ति का घमंड न करते हुए तब भगवान का शरण खोजें, भगवान का आश्रय लोड़ें। ये पांडव के जीवन से हमें ये चीज को शिक्षा ले सकते, पांडव के जीवन से शिक्षा हमें ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो वंश परंपरा की गणना की गई है, कल के प्रसंग से हमें सुने हैं कि किस प्रकार व्यास देव जी के दिव्य दृष्टि से अंबिका, अंबालिका और एक दासी से तीन संतान प्रकट हुए, उत्पन्न हुए, व्यास देव जी के दिव्य कृपा। संत जो होते हैं अनेक प्रकार के कृपा करते हैं, आंखों के द्वारा, अपने वचनामृत के द्वारा, अपने स्नेह प्रेम के द्वारा, संतों की कृपा अनेक मार्ग से बद्ध जीवों के ऊपर बरसती, बद्ध जीव के ऊपर आती है। उसी प्रकार संतों की कृपा बद्ध जीव के ऊपर अपने दिव्य दृष्टि, यदि संतों ने दिव्य दृष्टि प्रदान किया कोई बद्ध जीव को, तो उनका कल्याण हो जाती है, उनका उद्धार हो जाती है। कभी भक्तों ने हमें ऐसे देखते हैं, उनके दिव्य कृपा प्रदान करते हैं, उनके दृष्टिपात के द्वारा हमारे सारे सांसारिक कलमश छूट जाती है, सारे सांसारिक कलमशों से हमें परे हो जाते हैं। तो उसी प्रकार श्रील व्यास देव जो है भगवान के साहित्य के अवतार, तो उन्होंने अंबिका के ऊपर अपने दिव्य दृष्टि प्रदान किए। जब दिव्य दृष्टि प्रदान किए तो अंबिका में इतने शक्ति नहीं थी, अंबिका इतना समर्थ नहीं थी संतों की कृपा को ग्रहण करने के लिए। संतों तो कृपा करते हैं, लेकिन ये कृपा को ग्रहण करने का बद्ध जीवों के भीतर भी की योग्यता होनी चाहिए। जब व्यासदेव जी अंबिका के ऊपर कृपा दृष्टि प्रदान कर रहे थे, तो अंबिका में इतने शक्ति नहीं हुआ कि व्यासदेव जी की कृपा को ग्रहण करने का, इसीलिए वो समझ नहीं पाई ये किस प्रकार का कृपा कर रहे हैं, दृष्टिपात दृष्टि के द्वारा की प्रकार की कृपा कर रहे हैं। तो इसीलिए वो कृपा जो भगवान और संतों की कृपा को नहीं समझ पाते हैं, तो वो एक प्रकार का वन काइंड ऑफ ब्लाइंड एक प्रकार का अंधा है, ब्लाइंड है ये, वो एक प्रकार का अंधा व्यक्ति है। जो भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा को नहीं समझ पाता है, तो ये एक प्रकार अंधेरा में अंधा व्यक्ति है। ठीक उसी प्रकार श्रील व्यासदेव जी ने जो कृपा प्रदान की, तो अंबिका ने श्रील व्यासदेव जी के कृपा को नहीं समझ पाए, इसलिए वो आंख बंद कर दिए, और आंख बंद कर दिए, वो आंख बंद करने के कारण उनके गर्भ से जो संतान जन्म लिया, वो भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा को नहीं समझ पाए। धृतराष्ट्र भी अंबिका के गर्भ से जो धृतराष्ट्र जन्म लिया, वो भी इतने अंधा था। कल प्रभु जी बता रहे थे, खाली बाह्य दृष्टि से जो अंधा था ये बात नहीं है, अंतर्दृष्टि में भी अंधा था। बाह्य दृष्टि में यदि कोई व्यक्ति अंधा होता है तो वो बड़ी बात नहीं है, व्यक्ति में ये कमी हो जाती है जब व्यक्ति अंतर्दृष्टि में, अंदर से अंतर्दृष्टि में वो अंधा होता है, तो फिर तो वो समझ नहीं पाता है। बिल्लो मंगल ठाकुर देखा जाए तो बाह्य दृष्टि से अंधे थे, लेकिन अंतर्दृष्टि में वो कृष्ण के हाथ को पकड़ लिए, अंतर्दृष्टि में इतने कृष्ण कना करना मृत, जब उनका बाह्य दृष्टि नहीं था। बिल्लो मंगल ठाकुर का लिखा हुआ कृष्ण कर्णामृत, कृष्ण के कान को जो अमृत प्रदान करे, इसलिए उन ग्रंथ का नाम पड़ा कृष्ण कर्ण अमृत कर्णामृत। हाँ, जब तक बिल्लो मंगल ठाकुर के भौतिक ऐसे देख पा रहे थे बाह्य दृष्टि से, तब तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन जो बाह्य दृष्टि खत्म हो गया, लोप हो गया, और अंतर्दृष्टि के द्वारा भजन करने लगे, तब जाके भगवान श्री कृष्ण आकर के प्रत्यक्ष रूप में बिल्लो मंगल ठाकुर का देखपाल किए। तो यहाँ पर ये बात होती है, अंतर्दृष्टि जब अंदर की दृष्टि का देखने की शक्ति व्यक्ति में नहीं होती है, तो फिर ये बाह्य दृष्टि कुछ काम का नहीं रहता है। हमारा है ना बाह्य दृष्टि, हम भगवान के सामने तो खड़े हैं, उपस्थित है ना, कितने लोग भगवान को दर्शन कर पा रहे हैं बाह्य दृष्टि के द्वारा। हाँ, तो जब तक संतों के द्वारा दृष्टि प्रदान नहीं किया जाता, तब तक संतों के द्वारा हमें कृपा नहीं होता, तब तक ये भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम भगवान को दर्शन नहीं कर सकते। जब जैसे व्यास जी जब तक संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान नहीं किए, हाँ, तब तक वो महाभारत हस्तिनापुर में बैठ करके कुरुक्षेत्र का, इतने दूर कुरुक्षेत्र का घटना को नहीं बता पा रहे थे धृतराष्ट्र को। जब व्यासदेव जी के द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान किया गया, तब जाके संजय ने हस्तिनापुर में बैठकर इतने दूर से कुरुक्षेत्र का सारे विवरण को धृतराष्ट्र को बताने लगे। ठीक उसी प्रकार भगवान जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान किए, तब जाके भगवान के विश्व रूप को देखने के लिए समर्थ हुए। ठीक उसी प्रकार व्यासदेव जी तो दिव्य दृष्टि प्रदान किए, लेकिन अंबिका ने नहीं समझ पाए। हाँ, तो उसी प्रकार संतों की कृपा तो हमारे पर होती है, लेकिन हमारे भीतर बद्धता इतने प्रगाढ़ है, हमारे भीतर बद्ध जीवन की भौतिक इतने जोर है, तो ये चीजों को हमें अमल करने के लिए समर्थ नहीं हो पाते। तो ये हुआ व्यासदेव जी के कृपा अंबिका के ऊपर धृतराष्ट्र जन्म लिए, कल हम सुने। दूसरा, व्यासदेव जी ने अंबालिका के ऊपर कृपा किए, जिन्होंने पांडु महाराज जन्म लिए। तीसरा कृपा हुआ एक दासी के ऊपर व्यासदेव जी का, जिनके गर्भ से महामती महान धर्म की प्रवर्तक श्रील विदुर जी प्रकट हुए। और ये तीनों संतान व्यासदेव जी के कृपा से, कृपा कटाक्ष से प्रकट जन्म लिए। और दासी पुत्र विदुर जी होने के कारण और जन्मांध होने के कारण, धृतराष्ट्र जी जन्मांध होने के कारण, तो वो लोगों को राज नहीं दिया गया, तो राज पांडु महाराज को मिला और राज किए। जब इसी प्रकार पांडु महाराज राज कर रहे थे, उपयुक्त वयस में उपस्थित होने के कारण पितामह भीष्म तो ये राजाओं का विवाह की योजना बनाए। आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ना संस्कृत में बताते हैं, धृतराष्ट्र की पत्नी के पत्नी गांधारी के गांधारी ने 100 पुत्र तथा एक कन्या को जन्म दिया। सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था और कन्या का नाम दुस्सला था। कल प्रभु जी बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किए हमें सुने कि उन्होंने बताए कि धृतराष्ट्र से जो भी संतान जन्म लिए वो सब दूषित स्वभाव के थे, इसीलिए उनके नाम के पहले दू 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 सब दू दू करने लगे, सब दू थे। दुर्योधन, दुशासन, वो एक कन्या भी जन्म लिया, उनका नाम हुआ दुस्सला। इसी प्रकार तो दुष्ट व्यक्ति से दुष्ट संतान होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो पितामह भीष्म जब पांडु महाराज और धृतराष्ट्र जी उपयुक्त वयस में पहुंचे, तो उनका विवाह की आयोजन किए। और पितामह भीष्म गांधार राज सुबल की कन्या गांधारी के साथ धृतराष्ट्र के विवाह की योजना बनाए। और गांधार राज सुबल जब जाने कि ये पितामह भीष्म की दूत है, दूत पहुंचा सुबल गांधार राज सुबल के पास, और दूतों ने पितामह भीष्म की जो वार्ता है प्रदान किए, तो वार्ता को सुनकर सुबल जो गांधार के राजा सुबल जो थे, तो उन्होंने पहले तो अस्वीकार कर दिए, ये एक अंधे का मेरा पुत्र का विवाह कैसे हो सकता है, तो पहले तो इच्छा नहीं किए। फिर बाद में वंश और प्रसिद्धि के कारण तो सुबल जी राजी हो गए उनके कन्या गांधारी को धृतराष्ट्र के साथ विवाह देने के लिए। और गांधारी को जब पता चला कि मैं आगे जाकर के जिनको विवाह करने वाली हूं, मेरे जो भावी पति है तो वो अंधे हैं। अरे पतिव्रता का मार्ग को अनुसरण करते हुए गांधारी ने धृतराष्ट्र की जो अंधापन को अपने जीवन में ठान लिए, अपने जीवन में ले लिए। अंधत्व को पति का अनुगमन करते हुए गांधारी भी ये अंधत्व को स्वीकार कर लिए, अपने आंखों में एक पट्टी बांध लिए। तो इस प्रकार का अवस्था देखें तो शकुनी ने अपने जो बहन थी वो धृतराष्ट्र के पास अपने बहन को पहुंचा दिया। तो उसी प्रकार पितामह भीष्म गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह किए। उसके बाद पांडु महाराज जो थे तो उनके विवाह की आयोजन किए। तो पितामह भीष्म जदुवंश के बहुत बड़े विख्यात राजा हुए सूरसेन। ये सूरसेन के कन्या थी पृथा, जदुवंश के राजा थे। और इस सूरसेन जो थे जदुवंश की राजा, उन्होंने अपने मन में ऐसे विचार रखे थे, अपने मन में इस प्रकार का विचार लिए थे कि मेरे जो बुआ की पुत्र निसंतान है, सूरसेन जो राजा थे उनके बुआ के पुत्र निसंतान थे, और वो राजा का नाम था कुंती भोज। तो सूरसेन ने ऐसे विचार रखे थे कि मेरा भी जो भी प्रथम संतान होगा तो मैं मेरा बुआ का पुत्र कुंती भोज को प्रदान कर दूंगा। तो व्रत के अनुसार जब कुंती भोज को सूरसेन को पहला संतान जन्म लिया, तो पहला संतान को सूरसेन जी अपने बुआ के पुत्र गांधार राज कुंती भोज को दे दिए। और जो पृथा थी तो आगे चल करके कुंती देवी के रूप में विख्यात हुई, कि कुंती भोज के द्वारा लालित पालित होने के कारण पृथा का नाम हुआ कुंती देवी, हमें जिनको जानते हैं। तो उसी प्रकार कुंती देवी के साथ पितामह भीष्म पांडु महाराज को विवाह करा दिए। और पितामह भीष्म पांडु महाराज के साथ और एक राजकन्या को विवाह कराए थे, मद्र राज, जो कि शल्य जो कर्ण का सारथी बना था। अब कर्ण को बहुत धिक्कारा था और कर्ण उनका धिक्कार सुन करके बड़े ही खिन्न हो गए थे। फिर दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज के और से राज युद्ध करने के लिए आए थे, लेकिन दुर्योधन के छल कपट से शल्य को अपने पक्ष में ले लिए, और आखिर में वो शल्य को दुर्योधन का सारथी बनना पड़ा। और सारथी बनकर के दुर्योधन को बहुत फटकारे थे, तुम लोग कुत्ते हो, ऐसे धर्मवंत पुरुष के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए आगे हुए हो, तो बहुत फटकार थे। तो यही शल्य जो मद्र राज शल्य अपने बहन माद्री को तो पांडु महाराज के साथ विवाह करा दिए। उसी प्रकार धृतराष्ट्र का एक पत्नी गांधारी हुई, और ये जो पांडु महाराज के दो पत्नी हुई, एक थे कुंती देवी, दूसरा थे माद्री। विवाह संपन्न हुआ। एक बार ऐसे बातें समय बीत रही थी, एक समय ऐसे श्रील व्यासदेव जी हस्तिनापुर में पहुंचे, गांधारी के अंतपुर में। अरे गांधारी के राजमहल में पहुंचे तो गांधारी जब देखें श्रील व्यासदेव यहाँ पर पधारे हैं, तो बड़े श्रद्धा से बड़े भक्ति से गांधारी ने श्रील व्यासदेव जी के चरण कमल की पूजा की, उनके भक्ति की, उनकी सेवा अर्चना की। तो गांधारी की इस प्रकार का सेवा अर्चना को ग्रहण करते हुए श्रील व्यासदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर उनको कुछ वर देने के लिए इच्छा की है व्यासदेव जी ने। जब श्रील व्यासदेव जी गांधारी को कुछ वर प्रदान करने के लिए कहें, वर मांगने के लिए अनुमति दिए, तो गांधारी ने श्रील व्यासदेव जी को अपने पति की जैसे 100 शक्ति संपन्न पुत्र की मांग की, इच्छा आकांक्षा की, कि यदि मेरे पर प्रसन्न हो तो भेंट के रूप में मुझे मेरे पति के जैसे शक्ति संपन्न 100 पुत्र प्रदान कीजिए। तो श्रील व्यासदेव जी इतने समर्थ थे, तथास्तु कह दिए, कह करके वो हिमालय की ओर तप करने के लिए चल दिए। तो उपयुक्त समय में व्यासदेव जी के कृपा से गांधारी को गर्भ रहा, और ये गर्भ 2 साल तक रहा। ऐसे साधारण दृष्टि में दृष्टि से देखा जाए, बच्चा जैसे जन्म होते हैं, तो गांधारी के गर्भ 2 साल तक रहा ना, और उसी समय के भीतर कुंती देवी से युधिष्ठिर महाराज जन्म ले लिए थे। तो युधिष्ठिर महाराज जन्म लिए तो गांधारी स्त्री स्वभाव के बस होकर घबरा गई, स्त्री स्वभाव बस गांधारी ने घबरा गई और अपने पति धृतराष्ट्र को छुपा करके उनके अनजान से अपने गर्भ को गिरा दी। हाँ, और 2 साल के बाद गांधारी के गर्भ से एक गोलाकार मांस पिंडू, गोलाकार एक मांस निकला। और जब गोलाकार एक मांस निकला तो गांधारी ने वो मांस का गोलाकार मांस को वो फेंकने के लिए जा रही थी, ठीक उसी समय श्री व्यासदेव अपने योग दृष्टि से सारे तथ्य को समझ गए, सारे विषय को जान लिए और झटपट वो गांधारी के पास पहुंचे और पहुंच करके इस प्रकार का वार्ता करने लगे, कहने लगे, अरे सुबल की कन्या तुम ये क्या करने के लिए जा रही हो? तो वहां पर गांधारी ने व्यासदेव जी को कहे कि आपका कृपा से मुझे तो गर्भ रहा और ये गर्भ 2 साल तक रहा और आखिर में उनका नतीजा के ये परिणाम ये है, एक गोलाकार मांस पेंडू के रूप में गोलाकार मांस ये निकला है। तो यहाँ पर श्रील व्यासदेव जी गांधारी को कहते हैं कि मेरा जो आशीर्वाद है वो निश्चित रूप से सत्य होगा, मेरा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कभी भी हंसी मजाक से झूठ नहीं कहा। तो आप ऐसे करो, 100 बर्तन बनाओ और ये बर्तन में घी डालो और ये मांस का पेंडू को, गोलाकार जो मांस निकला है उसको रख दो। हाँ, तो व्यासदेव जी इस प्रकार रहने से तो गांधारी वो मांस के ऊपर, गोलाकार जो मांस उनका गर्भ से निकला था उनके ऊपर ठंडे जल छिड़का दिया। यदि वो प्रभुपाद जी ने ये सारे घटना को विस्तार रूप से ये श्रीमद् भागवतम में रखे नहीं, किंतु ये सारे प्रसंग श्रीमद् भागवत ना महाभारत के इतिहास में आप जानकारी ले सकते हो। तो गांधारी ने वो मांस के ऊपर गोलाकार जो मांस उनके ऊपर ठंडे जल छिड़का दिए, जैसे छिड़का दिए वो गोलाकार मांस वो 101 टुकड़ा बन गया। तो 101 टुकड़ा को गांधारी ने वो बर्तन में रख दिए, जैसे रख दिए तो श्री व्यासदेव जी ने कहे तो 2 साल तक उनको कवर करके रख दो, 2 साल तक उनको देख खोलना मत। और जब इस हिसाब से 2 साल के बाद जब गांधारी ने खोल करके देखा तो दुर्योधन प्रकट हुआ क्रमानुसार। हाँ, और जिस दिन दुर्योधन प्रकट हुआ ठीक उसी दिन भीमसेन भी जन्म लिया था। प्रकट तो नहीं हुआ, कह नहीं सकते कि जन्म लिया, प्रकट तो संत होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा कपटी था, मत्स्यरता का एक अवतार था, प्रतीक था। ऐसे दुर्योधन को कली का प्रतीक कहा जाता है और शकुनी को द्वापर का प्रतीक कहा जाता है। दुर्योधन कली का अवतार और शकुनी द्वापर का अवतार, ऐसे कहा जाता है। तो ये कली का अवतार जन्म लिया वो घड़े से। हाँ, उसके बाद ठीक जिस दिन उसके पहले युधिष्ठिर जी जन्म ले लिए थे, जिस दिन युधिष्ठिर ना दुर्योधन जन्म लिया ठीक उसी दिन भीमसेन जन्म लिया। और दुर्योधन के पास क्रमानुसार दुशासन, उनका भाइयों का तो लिस्ट बहुत लंबा है, वो सारे भाइयों का नाम मुझे पता नहीं है, तो महाभारत में लिखा गया है। और ठीक जिस दिन दुर्योधन जन्म लिया ठीक उसी समय बड़ी जोर से आंधी चलने लगी, गींद, गिधेड़, कौए, कुत्ते ये सब रेंकने लगे, भव भव करने लगे और आकाश से उल्कापात होने लगा और कई कई जगह तो आग लग गई। इस प्रकार का ये बच्चा जब जन्म लिया तो इस प्रकार अशुभ लक्षण जब इस सारा सो हल मच गया, प्रकट दिखने लगा, तो धृतराष्ट्र जी, महामती विदुर जी और पितामह भीष्म और बड़े बड़े श्रेष्ठ मनीषी ब्राह्मणों को बुलाए। तो ये सारे अशुभ लक्षण का आगे जाकर परिणाम क्या देने वाली है, उनका इस पर क्या परिणाम है, क्या आगे जाके क्या परिणाम मिलेगा होगा, तो वो खबर लेने के लिए वो सब पूछने लगा धृतराष्ट्र जी। और जो भक्त होते हैं वो हाँ त्रिकालज्ञ होते हैं। तो विदुर जी कह दिए कि हे राजन, यदि आप वंश की कल्याण चाहते हो, तो यदि आप मंगल चाहते हो, जितना जल्दी हो सके ये जन्म लेने वाला संतान को तत्क्षणात त्याग दो। और ऐसे हमें सांसारिक दृष्टि से हमें देखें तो बड़े पुत्र जो होता है वो बाप का होता है, और छोटे पुत्र जो होता है वो माँ का होता है, और बीच वाला वो किसका नहीं होता है। तो इसलिए बीच वाला कभी कभी पूछा कर देता है, मैं किसका हूँ, मैं बाप का नहीं हूँ, माँ का हूँ, माँ नहीं हूँ, तो मैं किसका हूँ। तो वहां पर पिता माता बोलते हैं, क्या तुम हवा खा के जी रहे हो क्या, क्योंकि ये बात है हमारा घर में एक बार हुआ था। तो बड़े पुत्र कहने लगा मैं बाप का हूँ, कि छोटा वाला कि मैं माँ का हूँ। तो बीच वाला बड़े दुखी हो गया, और दुखी होकर के बोला तो फिर मैं किसका हूँ, मैं मेरा कौन है। तो वहां पर पापा जो थे वो बोलने, क्या तुम हवा खा के जी रहे हो क्या, तुम भी हमारे हो। तो उनको थोड़ा राहत मिला। तो तो हमारे परिवार में नहीं हुआ था, हमारा नेबर में हुआ था। तो ये ऐसे वो सब जन्म लिए दुर्योधन के, और आखिर में एक कन्या जन्म ली, उनका नाम हुआ दुस्सला। ये था गारी और दुर्योधन वंश परंपरा, वंश की हिसाब की हिसाब। हाँ, तो उसके बाद पांडु महाराज के जो दो पत्नी थी माद्री और कुंती देवी, और पांडु महाराज धर्म के प्रति उनका बड़ा श्रद्धा रखे थे, श्रद्धा था। तो अपने दो पत्नियों को लेकर एक बार उस जंगल में इधर उधर हो रहे थे, अचानक पांडु महाराज का ध्यान गया एक हिरण के ऊपर। जो हिरण उनके पहले किंदम मुनि थे, एक तपस्वी थे, और छुप छुप करके वो हिरण तपस्वी तपस्विनी संसार के कुछ सांसारिक भोग में हो रहे थे, सांसारिक भोग में थे। हाँ, तो लेकिन अपने बेस को बदल करके ये हिरण हिरनी जोनी में इस प्रकार संसार के सुख कैसे वो जान समझ रहे थे। तो इस प्रकार संसार के सुख में रह रहे थे, ठीक उसी समय पांडु महाराज अपने धनुष में बाण उठाकर वो छोड़ दिए, और अचानक वो बाण जा करके वो ऋषि के शरीर में लग गया, और तुरंत उन्होंने अपने प्राण को छोड़ दिया। और प्राण छोड़ने के पहले उन्होंने ऐसे वचन उनके मुंह से निकल पड़ा कि देखो हे राजन, हमें देखते हो कि हमें बड़े निष्पाप जंतु है, और निष्पाप जानवर के ऊपर आपने एक धर्मज्ञ व्यक्ति है, और ऊपर से आप राजा हो, और राजा जो होता है वो सारे जो जंतु प्राणी को अपने प्रजा के रूप में देखता है, तो आपने ये वार्ता हमारे साथ नहीं की है। हाँ, तो हम इस प्रकार का थोड़ा सा भोग में थे, दाम्पत्य जीवन की जो सुख उसमें थे, तो उन्होंने आपने रोक दिए, बाधा पहुंचाए, तो हमें भी आपको ये अभिशाप देते हैं। ठीक उसी जिस प्रकार हमारा दाम्पत्य जीवन में आप प्रतिबंधक के रूप में खड़े हुए, बाधा पहुंचाए, ठीक उसी प्रकार आप जिस जो समय दाम्पत्य जीवन की सुख लेने के लिए कोशिश करोगे, आपका जीवन का अवसान हो जाएगा। तो ऋषि वाक्य अचल है, अटल है। हाँ, तो तपस्वियों के वाक्य वहां बाण से बड़े खिन्न हो गए, मर्माहत तो होने लगे, और सांसारिक संसार के जीवन से वैराग्य उनके जीवन में उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने सोचे फिर और राज क्या करना है, तो संसार से वैराग्य ले लेना है। इस प्रकार विचार करके उन्होंने ऐसे मन में दिए कि मुझे संन्यास जीवन में चले जाना है। और ये खबर जब हस्तिनापुर में पहुंचा, तो धृतराष्ट्र जी तो राज करने लगे। जब भाई को अभिशाप मिल गया, तो फिर उन्होंने उनको पता चला कि मेरा भाई अभी संन्यास जीवन स्वीकार करने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने फिर वो राज सिंहासन संभाले। जब तक फिर कुछ उनका प्रतिकार नहीं होती है। तो जब इस प्रकार पांडु महाराज संन्यास जीवन में प्रवेश कर रहे थे, उनके जो दोनों पत्नी थी माद्री और कुंती देवी, वो बड़े पतिव्रता थी, और पांडु महाराज कह दिए तुम लोग दोनों हस्तिनापुर चले जाओ, मेरे जीवन को आसाम नहीं रखो। इस प्रकार जब कहें तो माद्री और कुंती बड़े खिन्न दुखी हो गए, और पतिव्रता के व्रत के अनुसार वो अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। तो इसीलिए फिर पांडु महाराज को संन्यास जीवन के जागरूकता पर उनको पुनःप्रस्थ जीवन लेना हुआ कि संन्यास जीवन में साथ में पत्नी नहीं हो सकती, वानप्रस्थ में कुछ छूट दिया जा सकता और साथ में पत्नी हो सकती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति संन्यास जीवन में प्रवेश करता फिर वो जीवन में पत्नी वहां पर नहीं रह सकती। तो फिर संन्यास जीवन को छोड़कर पांडु महाराज वानप्रस्थ जीवन को लिए और माद्री और कुंती के साथ रहे, और जो इस प्रकार का वन वन में अपने पत्नियों के साथ घूम रहे थे, अमावस्या की तिथि थी तो कुछ महर्षि लोग ब्रह्मा लोग जा रहे थे ब्रह्मा जी का दर्शन लेने के लिए। तो पांडु महाराज जब देखें तो ये महर्षि लोग ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा लोग जा रहे हैं, तो पांडु महाराज को ऐसा थोड़ा उत्साह हुआ, उत्कंठा हुआ, मन में इच्छा हुआ मैं भी जाऊं महर्षियों के साथ होकर ब्रह्मा जी का दर्शन लूं। लेकिन जब अपने हृदय की बातें पांडु महाराज ऋषियों के सामने रखे तो ऋषि लोग इधर उधर बातें करके तो पांडु महाराज को रोक दिए, जाने नहीं दिए। तो पांडु महाराज समझ गए कि ऋषि लोग मुझे इसीलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि मैं एक निसंतान अपुत्रिक हूं, और ऐसे गृहस्थ जीवन में जो निसंतान होता है तो ऐसे दिखा जाता है वो बड़े अमंगल व्यक्ति होता है। गृहस्थ जीवन में सुंदर बच्चे जब होते हैं, गृहस्थ जीवन में जब बच्चा होते हैं संतान होती है तब जाके गृहस्थ जीवन सुंदर लगती है। गृहस्थ जीवन में जब संतान नहीं होती है तो फिर ये अभिशप्त जीवन है। हाँ, गृहस्थ जीवन एक अभिशप्त अभिशाप की अभिशाप बन जाता है। तो पांडु महाराज इस प्रकार का सोचें कि मैं निसंतान होने के कारण तो महर्षि लोग भी मुझे अपनी कृपा प्रदान करने के लिए तैयार नहीं हुए। तो वहां पर पांडु महाराज अपने पत्नी कुंती देवी को अनुरोध करते हैं, देखो मेरे से कोई आशा नहीं रखो, मुझे कोई अपेक्षा नहीं करो, तो आप अपने पतिव्रता बल से और ऋषियों की कृपा संतों की आशीर्वाद से आप संतान उत्पत्ति करो। क्योंकि पांडु महाराज को ये संदेश हुआ था, जानकारी हुआ था कि प्रथा जब सूर्यसेन की कन्या जब कुंती भोज के पालित धर्मपुत्री बन गई तो वो समय कुंती भोज के दरबार में बड़े संत लोग बड़े साधु लोग आया करते थे। तो उसी समय दुर्वासा जी कुंती भोज के दरबार में पधारे थे और कुंती देवी दुर्वासा जी के बड़े ही सत्कार बड़े ही भक्ति से उनका सेवा की थी, और दुर्वासा जी कुंती देवी के सेवा से बड़े प्रसन्न हुए थे, और प्रसन्न होकर दुर्वासा जी कुंती देवी को एक मंत्र प्रदान किए थे और कह रहे थे बेटी देखो ये मंत्र उच्चारण करके जो देवताओं को आवाहन करोगे वो देवता से आपको पुत्र प्राप्ति हो सकती है होगा। तो दुर्वासा जी के इस प्रकार का वर से कुंती देवी को बड़ा कौतूहल हुआ और एकांत स्थान में जाकर वो अपने वो मंत्र उच्चारण करके दुर्वासा जी के द्वारा प्रदत्त मंत्र को उच्चारण करके उस सूर्यदेव को आवाहन की, और तत्क्षणात वो मंत्र उच्चारित होने मात्र से तत्क्षणात सूर्यदेव वहां पर प्रकट हुए और प्रकट होकर के कुंती देवी को कुंती देवी में गर्भस्थापित कर दिए। और साधारण तो दिखा जाती है बात, जब अभी भी कोई कन्या कभी अविवाहिता समय में यदि कोई किसी का संतान उत्पन्न होती है तो समाज की बड़े बाछंद हो जाती है, समाज की दृष्टि से बड़े घृण्य बन जाती है, कदर्ज्य रूप में सारा समाज उनको धिक्कारती है। तो लोकलज्जा समाज दृष्टि से बड़े अपने को घिनौने समझते हुए तो कुंती देवी अपने जन्मित संतान को नदी में बहा दी, और ये नदी में बहा हुआ पुत्र अधीरथ और राधा ये दोनों के द्वारा पोषित हुए, पाल पोषण हुए, और आगे और उनका नाम पड़ा बृकसेन, जो कुंती देवी के पहले संतान जन्म लिया था, और अधीरथ और राधा ये दोनों के द्वारा पोषित हुए पालित हुए वो संतान का नाम पड़ा बृषसेन, और ये बृषसेन आगे जाकर के कर्ण बने। और ये सूर्यदेव के द्वारा उत्पन्न होने के कारण बड़े ही तेजस्वी बने थे, बड़े ही ज्ञानी वेदांगत और बड़े ही धनुर्धारी बड़े ही शास्त्र में प्रवीण अभिज्ञ व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए थे। और कर्ण के जीवन में बहुत बड़ी सद्गुण ये कि जो समय कर्ण जप करते थे वो समय में कोई यदि ब्राह्मण वहां पर पधारते थे पहुंचते थे तो ब्राह्मण जो भी मांगते थे वो कर्ण उनको प्रदान दे देते थे। तो ये बात को जानकर अर्जुन ने अपने पुत्र का हित करने के लिए ब्राह्मण वेश बना करके वो कर्ण के पास पहुंचे। जब जो समय कर्ण के पास पहुंचे तो वो समय कर्ण अर्जुन इंद्र ने जब कर्ण के पास पहुंचे वो समय कर्ण तो जप कर रहे थे। तो अपने पुत्र अर्जुन का हित करने के लिए इंद्र ने तो कर्ण से कुंडल और कवच मांग लिए। तो कर्ण ने भी इंद्र को कुंडल और कवच प्रदान कर दिए। और कर्ण का इस प्रकार का उदारता देख करके इंद्र ने भी उनको एक आशीर्वाद दिए थे, मैं ऐसे एक शक्ति प्रदान करता हूँ जो शक्ति के द्वारा देवता मानव गंधर्व यक्ष रक्ष असुर किन्नर तो जिसके ऊपर मेरा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग करोगे तत्क्षणात उनका विनाश हो जाएगा। इस प्रकार इंद्र भी कर्ण को इस प्रकार का आशीर्वाद दिए थे। तब पांडु महाराज को जब पता हुआ था पहले तो ये बातों को समझ करके तो कुंती देवी को कहें, देखो कम से कम ये समाज के कलंक से मुझे और आप हम दोनों बचने के लिए तो आप देवताओं को आह्वान करके दुर्वासा जी के पंत्र को उच्चारण करके आप पुत्र प्राप्ति करो। कुंती देवी ये मंत्र को उच्चारण करके पहले धर्मराज को आह्वान किए बुलाए और धर्मराज से कुंती से युधिष्ठिर महाराज जन्म लिए, उसके बाद वायुदेव से भीमसेन, उसके बाद इंद्र से अर्जुन कुंती देवी को प्राप्त हुआ। और जब तीन पुत्र हो गया कुंती देवी को देवताओं से तो फिर पांडु महाराज कुंती देवी को कहें, देखो आपका तो तीन पुत्र प्राप्त हुआ, अभी आप ये माद्री के ऊपर कृपा करो, आप ये मंत्र उच्चारण करके माद्री को भी जैसे संतान प्राप्ति हो पुत्र प्राप्ति हो ये कुछ करो। तब फिर कुंती देवी ने ये मंत्र उच्चारण करके अश्विनी कुमार को बुलाए और अश्विनी कुमारों की कृपा से नकुल और सहदेव ये माद्री को पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। उसी प्रकार पांडु महाराज के तो पांच पुत्र प्राप्त हुआ। तो माद्री को लेकर तो एक बार पांडु महाराज ऐसे जंगल में विचरण कर रहे थे, अचानक उनके मन में काम वासना उत्पन्न हुआ। पहले से ऋषियों का साप है, विधि का जो विधान है तो कोई लांग नहीं सकता। और उस पोपर से ऋषि वाक्य पांडु महाराज के ऊपर है, साप है, तो उनको कौन टाल सकता। तो पांडु महाराज के भीतर अचानक काम वासना उत्पन्न हुआ और माद्री साप में थी तो माद्री ने रोक रही, देखो आप भूल जा रहे हो, आपको याद होनी चाहिए आपके ऊपर तपस्वियों के साप है, आप सापी तो जैसे कोई स्त्रियों का संग करने की इच्छा करोगे तुरंत तत्क्षणात आपका निधन हो जाएगा, आप विनाश हो जाएगा, तो आप क्यों ये बातें को विस्मरण आपको ये बात क्यों विस्मरण हो रही है। तो निश्चित रूप से ये विधाता का ये काल का क्रूर चक्र है। तो इस प्रकार याद कराने के बावजूद भी पांडु महाराज नहीं सुने और जैसे वो माद्री का संग करने के लिए इच्छा किए तत्क्षणात पांडु महाराज को वहां पर मृत्यु हो गई, वहीं पर निधन हो गया। और जैसे पांडु महाराज का निधन होती है तो बहुत हल्ला हो जाती है और बड़े जोर जोर से जब कुंती माद्री रोती है तो फिर कुंती देवी वहां पर आकर के पहुंचती है और जब कुंती देवी देखती है तो अभी उनके पति का देहांत तो हो चुकी है, तो फिर वो भी रोती है और माद्री को कुंती देवी कहते हैं कि देखो आप छोटी हो, ये जो पांच बच्चे हैं बच्चों का देखभाल पालन पोषण आप करो, मैं पति के साथ सहमरण कर जाती हूँ, मैं पति के साथ सती बन जाती हूँ, आप ये बच्चों का ध्यान दो। जब कुंती देवी इस प्रकार का माद्री को कहने लगी तो माद्री ने कहने लगी देखो आप बड़ी हो, बड़ों के जो बड़े होते हैं उनके भीतर कोई भेद भाव नहीं होता है, तो आप बड़े होने के कारण मेरे बच्चे और आपके बच्चे में कोई भेद नहीं कर सकते, तो आप ये बच्चों को ध्यान आप देखो, मैं पति के साथ सती हो जाती हूँ। हाँ, कि मेरे वजह से पति का देहांत तो हुआ तो मैं पति के साथ सती हो जाती हूँ, इस प्रकार कह करके। और सारे वहां पर उपस्थित संतों ने भी ये बातें को अनुमोदन किए और माद्री पांडु महाराज के साथ सती हो गई। और जब सती क्रिया संस्कार हो गया तो बच्चों को लेकर कुंती देवी हस्तिनापुर लौटते हैं। जब लौटते हैं तो सारे जो दुर्योधन का ना धृतराष्ट्र के जितने सारे बच्चे थे, लड़के थे, हाँ, तो वो सब कहले कहने लगे, अरे पांडु महाराज को तो साफ था, तो ये बच्चे किसका है? ये बच्चे तो पांडु का नहीं है, तो ये और किसके बच्चे को हमें राजमहल में प्रवेश करने के लिए नहीं दे सकते? हाँ, लेकिन वहां पर पितामह भीष्म विदुर जी कहने के कारण से कुंती देवी के बच्चों को फिर स्वीकार किए। हाँ, ऐसे हमें संसार में देखे हैं, यदि कोई स्त्री देवताओं के आश्रय लेती है और देवताओं की कृपा से यदि उसको कोई संतान होती है तो देवता का नहीं हो जाता, उनका पति का कहा जाता है। उसी प्रकार कुंती ने यदि कोई देवताओं की कृपा से संतान प्राप्त किया तो देवता का नहीं हो गया, वो पांडु का कहा जाएगा। ये बातें को समझाने के बाद तो फिर उनको रखा गया, नहीं रखा तो गया लेकिन छल कपट होने के कारण दुर्योधन के अपने भाइयों के भीतर, तो उनको वहां पर नहीं रखा गया, वरुणावंत में रखा गया। हाँ, और आज के तात्पर्य में ना अनुवाद में प्रभुपाद जी कहते हैं तो फिर वहां पर भी उनको शांति से रहने नहीं दिए, उनको वन में जाना पड़ा पांडवों को, और ऐसे वन में विचरण कर रहे थे। हाँ, अचानक इसी वन में विचरण करते करते पांडव लोग एक बार एक पेड़ के नीचे सोए हुए थे। हाँ, जो पेड़ के नीचे सोए हुए थे, हाँ, और भीमसेन सब सो गए थे, भीमसेन जगे खड़े हुए थे, और जो पेड़ के नीचे सोए हुए थे वो पेड़ के ऊपर एक असुर था, नरभक्षी असुर, उनका नाम हिडंबासुर। और हिडंबासुर को जब पता चला ये मनुष्य है, उनका खून पीना है, हाँ, तो अपने बहन हिडंबी को भेजा, जाओ बहन जाओ, आज हम फुटबॉल लाइव मनाएंगे। हाँ, ये सारे तो ये दैवी कृपा से मुझे बहुत बड़ा भोजन मिला है, मुझे ताजा ताजा खून पीना है, तो जा ये सारे को मार करके मेरे पास ले आओ। और हिडंबी अपने भाई हिडंबासुर का आदेश लेकर के जब आई, देखें सारे लोग सो गए लेकिन भीमसेन जगह जगह खड़े हुए हैं, और भीमसेन को देख करके उनके भीतर उनको मारने की इच्छा जो रख करके आई थी वो खत्म हो गई। और भीमसेन को देख करके हिडंबी अपने भीमसेन को अपने पति के रूप में पाने के लिए इच्छा की, और भीमसेन के पास आकर के सारे अपने मन की बातें कही। और इस प्रकार बात करते करते भीमसेन के साथ और बड़े देर हो रही थी, तो हिडंबासुर और संभाल नहीं पाए, इतने देर क्यों हो रही है, मेरे बहन कहाँ गई, इतने देर क्यों कर रही है, मेरा डिनर का विलंब हो रही है, मेरा अभी डिनर करना है, तो ये तो क्यों इतना लेट क्यों हो रही है। तो वो विलंब के देख करके वो आकर के वहां पर पहुंच गया। जब पहुंच गया देखा, अरे ये उनका तो बहन का मति गति बदल गई है, हाँ वो तो मारना क्या, वो तो उनके साथ हो गई है, साथ रहने लगी है। हाँ, तो चिल्लाने आवाज करने लगा, अरे हाँ तो तुम इतने हमारा वंश की कलंक लगा दी, मैं ये लोगों के साथ आपका भी मैं चटनी बनाता हूँ। हाँ, इस प्रकार कर करके जब हिडंबासुर पांडव के ऊपर कूद पड़ा तो भीमसेन ने पकड़ा, और पकड़ा करके बहुत उससे बहुत जोर से वहां पर पिटाई होती है। तो ये आवाज सुनकर के सारे पांडव लोग जग जाते, जो युधिष्ठिर अर्जुन कुंती देवी नकुल सहदेव सोए हुए थे सारे जग जाते, जग करके देखते हैं भीमसेन और ये हिडंबासुर का बहुत जोर से कसरत चल रही है, और बगल में एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी है। तो कुंती देवी आकर के उस स्त्री को पूछती है, आप कौन हो? हाँ, तो ये हिडंबी जो हिडंबासुर का बहन जो थी हिडंबी, वो सारे बातें को बताती है, मैं एक राक्षस की बहन हूँ, मैं भी राक्षसी हूँ, लेकिन आप लोगों को मारने के लिए आई थी, लेकिन आप लोग को देख करके मेरे हृदय बदल गई, मैं आप लोग के साथ रहने के लिए इच्छा आपका पुत्र को मुझे पति के रूप में मैं मन में ली, तो कृपा करके आप मेरा मन को इच्छा को पूरा करो। तो उसी समय के भीतर भीमसेन ने हिडंबासुर को मार देता है। मारने के बाद पांडवों और कुंती महारानी चलते हैं। जो चलने लगते हैं तो कुंती ये जो हिडंबी थी वो भी पांडवों के पीछा करने लगी। जब पांडव देखते हैं ये जो राक्षसी हिडंबी वो हमारा पीछे पीछे आ रही है, तो फिर वहां पर भीमसेन कह रही है, अरे राक्षसी, हाँ तुम्हारा तेरा भाई जो राक्षस है, अरे राक्षसी को हम स्वीकार नहीं करते, चली जाओ। तो इस प्रकार भीमसेन जब कहते हैं तो युधिष्ठिर महाराज धर्म को सामने रख करके भीमसेन को कहते हैं जाओ, उनका उनको ग्रहण करो। हाँ फिर युधिष्ठिर महाराज कहने से भीमसेन हिडंबी राक्षसी को अपने पत्नी के रूप में अपने जीवन में मान लेते हैं। हाँ और भीमसेन वहां पर कहते हैं जब तक एक संतान उत्पन्न हो जाता, जब जैसे एक संतान आपसे उत्पन्न हो जाता तब तक तब मैं आपको छोड़ दूंगा, आपके साथ नहीं रहूंगा, मेरे भाइयों के साथ मैं रहूंगा। और ये हिडंबी राक्षसी जो थी वो प्रस्ताव में राजी हो गई। और भीमसेन और हिडंबी राक्षसी से घटोत्कच, हाँ एक संतान महाभारत का बहुत बड़ा युद्धिया बना घटोत्कच जन्म लेते हैं। और ये घटोत्कच जैसे जन्म लेता है तो पांडवों को बड़े सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं। और पांडवों को प्रणाम करते हुए वहां पर उनको आज्ञा लेते हैं, हाँ तो आप लोगों को जब जब भी जरूरत होगा, जब मुझे आदेश करोगे और मुझे स्मरण मात्रों से हाँ मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। जब भी आप इतना बड़ा संग्राम होने वाली है हाँ, तो जो समय आपको जरूरत होगा मुझे स्मरण करना, मैं आपके पास पहुंच करके मैं आप लोगों को मदद करूंगा। उसी प्रकार कह करके घटोत्कच हाँ तो उत्तर दिशा में चला गया। और जो हिडंबी राक्षसी थी भीमसेन के पत्नी, वो भी अपना मार्ग बदला करके, क्यों जान ली अभी भीमसेन मेरे साथ रहने वाले नहीं है, वो अपने भाइयों के साथ जाने वाले हैं, तो वो भी अपने मार्ग पर चले गए। इसी प्रकार हाँ ये महाभारत की इतिहास तो हाँ बहुत लंबा है, लेकिन आज के हिसाब से वंश परंपरा के गणना के हिसाब से प्रभुपाद जी जहाँ तक रुके हाँ तो समय भी नहीं है, तो जहाँ तक कहें तो उसी को लेकर के मैं आप लोगों को थोड़ा बताया। तो और यहाँ पर हमें ये वाणी को विराम देते हैं, तो कुछ प्रश्न है तो बाद में पूछ लीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की मिताई गोर प्रेमानंदे।